शांति हम सबके बीच आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी पहुंच चुके हैं। हम सब उनका करतल ध्वनि से स्वागत वंदन करते हैं। चंदन की खुशबू और फूलों का हार और आज की सभा में आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का स्वागत है बारंबार बारंबार। साक्षी स्थिति द्वारा साक्षात्कार मूर्त कैसे बने, इस विषय पर हम सबके क्लास कराएंगे। आपकी विशेषताएं तो बहुत है, आपने बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त किए हैं, फिर भी कुछ विशेषताओं को मैं वर्णन करती हूँ। जैसे भगवान को दिल वाला कहते हैं, ऐसे भगवान समान सबके दिल को ठीक करने वाले बहुत सारे कैट प्रोग्राम आप करते हैं। हार्ट पेशेंट को सर्जरी के बिना ठीक करके भगवान समान दिल वाला टाइटल आपने प्राप्त किया है। बाबा आपको दिल वाला डॉक्टर कहते थे। वर्तमान समय आप वाटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर माउंट आबू के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एवं मेडिसिन हैं। विश्व में कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 22 अक्टूबर 2010 को दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा आपको अवार्ड मिला। बहुत सारे अवार्ड्स आपको आपकी विशेषताओं और आपके कार्य को देखते हुए मिला है। आप 1986 से ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाए जाने वाला राजयोग ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं और 1995 अप्रैल से ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वस्थ जीवन शैली और मेडिटेशन के द्वारा आपने अनेक अनेक ऐसे हृदय रोग के जो पेशेंट हैं उनको आपने बिना ऑपरेशन के ठीक किया है। ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। आपकी विशेषता के लिए कुछ सुंदर शब्द, अपनी हिम्मत पे उड़ने के काबिल है हम, मौसम की हवाओं के सहारे नहीं, रुख हवाओं के मोड़े हैं हम परिंदे कभी हारे नहीं हैं। आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी,
ओम शांति। आज सारे विश्व में चारों तरफ हलचल है। चारों तरफ हलचल ही नहीं, सिर्फ हमारे अंदर भी हलचल है, तन में भी हलचल है, मन में भी हलचल है, धन में भी हलचल है और संबंध संपर्क में भी हलचल है। और ये हलचल बढ़नी है। खाली समय इन चार बातों में नहीं, तन मन धन संबंध संपर्क में नहीं, हमारे पड़ोस में भी हलचल है, समाज में भी हलचल है, हमारे गांव जिस गांव या शहर में वहां भी हलचल बहुत है। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बदल रही हैं, हमारे देश में हलचल है, विश्व में तो बहुत ही हलचल बढ़ गई है। ऐसे समय हम कैसे साक्षी दृष्टा बन करके रहें? साक्षी दृष्टा अर्थात डिटैच्ड ऑब्जर्वर। हम डिटैच होके रहें, अपने सत्य में स्थित रहें, उस परम सत्य बाप से कंबाइंड रहें। क्योंकि जो भी हमने थोड़ी देर पहले हमने प्रैक्टिस की, मैं अशरीरी आत्मा परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूं, मैं आत्मा परमधाम घर से इस धरती पर अशरीरी आई थी, सतोप्रधान अवस्था में आई थी, पावन अवस्था में आई थी, 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस घर जाना है। किंतु पहले के 21 जन्म जो हमारे बचपन के कह सकते हैं, सत्युग त्रेता पे हम सतो प्रधान रहे, फिर सतो हुए, किंतु द्वापर युग से पिछले 63 जन्मों से जब से देह अभिमान आया, बॉडी कॉन्शियस रोल कॉन्शियस बने, मेटेरियल कॉन्शियस बने, तब से हमसे 63 जन्म में बहुत सारे पाप कर्म हुए, विकारों के वश हमने कर्म किए, और वो जो विकारों के वश हमने कर्म किए, अब वो पाप कर्म जब तक हम चुकतू नहीं कर लेंगे, पाप कर्म चुकतू करने के बाद ही हम वापस घर जा सकते हैं, क्योंकि वो कर्म हमारे बंधन बन गए। जैसे कर्जा हो जाता है ना हमारे किसी के ऊपर, वो कर्जा बिना चुकतू के हम जा नहीं सकते, वो कर्जा चुकतू करने के बाद ही हम यहां से निकल सकते हैं, तभी हम अशरीरी बन सकते हैं। और एक ही स्थिति अशरीरी स्थिति, ना तो हमारी देहमानी स्थिति से विक्रम विनाश होते हैं, ना हमारी आत्मानी स्थिति में विक्रम विनाश होते हैं, ना विदेही स्थिति में विक्रम विनाश होते हैं, सिर्फ अशरीरी स्थिति में विक्रम विनाश होते हैं। क्योंकि परमात्मा जो है, शिव बाबा जो है, वो उसको जीरो, मतलब शिव बाबा को जीरो कहते हैं ना, शून्य है ना, बिंदी है, उसको कोई भी संकल्प नहीं चलते हैं, वो निर्संकल्प दुनिया में रहते हैं, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में रहते हैं, निराकारी दुनिया में रहते हैं। और हम मनुष्य जितने हमने द्वापर युग से जितने पाप कर्म किए, उतनी हमारे संकल्पों की स्पीड बढ़ती गई है, और संकल्पों की स्पीड बढ़ने से हमारे संकल्प, अभी तो हमारे संकल्प एवरेज जो कहते हैं आजकल हम, 30 से 40 संकल्प एक मिनट में चलते हैं, जिसमें से 90% संकल्प पास से आते हैं, पास की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स जो बचपन से हमें हुई हैं उनसे पैदा होते हैं। तो आज थॉट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और आत्मा जब शरीर से अलग है तो उसका संकल्प जीरो है, किंतु जैसे ही आत्मा शरीर में आती है तो उसके संकल्प बढ़ते हैं। तो अभी हमको जितना हम अपने को उस ओरिजिनल स्टेज को, अपने जो परमधाम वाली स्थिति को जितना इमर्ज करके, जितना उस परम सत्य परमात्मा से कंबाइंड रहने का अभ्यास करते हैं, तो हमारा विक्रम विनाश होते हैं। पर इसके लिए क्या प्रैक्टिस करें, कैसे हम इस शरीर में रहते हुए, इस दुनिया, अपने परिवार में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, हर कार्य करते हुए हम साक्षी दृष्टा रहें? क्योंकि अगर हम इस दुनिया में रहते हुए, हर कार्य करते हुए, अगर हम साक्षी दृष्टा बन गए, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन गए, तभी बाबा हमें टच करा सकता है, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयंकर है। जब पांचों तत्व, कहते ना कल भी बाबा ने कहा, प्रकृति भी बार बार बाबा के पास आती है, पूछती है कि कब खत्म करें, कब इसको पूरा करें। माया भी बाबा के पास बार बार आती है, वो भी जाना चाहती है, प्रकृति भी तंग हो गई है, माया भी जाना चाहती है, और साथ साथ अभी वो समय आ गया है, समय भी आ पहुंचा है, 84 जन्म पूरे हो गए। और आप देखें, अगर आज के समाज में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं थी जब एटॉमिक वेपन्स बिल्कुल रेडी मोड में है, प्रकृति के पांचों तत्व भी विनाश करने के लिए पूरा तैयार है, किंतु कमी हमारे अंदर है। तो हमें ऐसी स्थिति हमारी बन जाए कि हम साक्षी दृष्टा बन जाएं, अर्थात जो भी तन में कुछ हो रहा है, तन में अभी तो रोग, पहले तो बहुत कम रोग होते थे, आज तो हर एक के शरीर में बहुत सारे रोग हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, एसिडिटी है, सांस की तकलीफ है, सिर में दर्द है, पेट ठीक नहीं है, घुटने खराब है, कमर खराब है, और भी बहुत सारे रोग हैं, तन में बहुत सारी हलचल हो रही है, तरह तरह की बीमारियां हैं। वो तन के अंदर जो भी हलचल हो रही है, मन के अंदर जो हलचल हो रही है, मन में हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिसे चित्त कहते हैं, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, पिछले जन्मों को जिसमें पाप कर्म भरे हुए हैं, अवचेतन मन जो इस जन्म के पाप कर्म जिसमें भरे हुए हैं, वो सारे के सारे हमारे साथ हैं, उनको खाली करना है। हम कैसे जाएंगे? फरिश्ता किसे कहते हैं? फरिश्ता उसे कहते हैं जिसका 100% मन कॉन्शियस हो, चेतन हो, जरा भी कॉन्शियस, अब सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस मन नहीं होता है फरिश्तों में, इसलिए फरिश्तों को भी स्वप्न नहीं आते हैं, फरिश्ते देवताओं को भी कभी स्वप्न नहीं आते हैं, सारे स्वप्न सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। जो हमसे गलत काम होते हैं, जो हमारी सप्रेस्ड इमोशंस होती हैं, वही सपनों में फिर सपनों के रूप में हमें रात को दिखाई देते हैं। तो देवताओं को नहीं ऐसा होता है। और जब हमारा 100% मन कॉन्शियस होगा, तभी हमारी 100% कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होगी। फिर जो हम सोचेंगे वो हो जाया करेगा, हम वही सोचेंगे जो होने वाला होगा। तभी कहते सत्संग में हर संकल्प सिद्ध है, जो भी हम सोचते हैं हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही सोचते रहते हैं, जो होने वाला होता है हम वही सोचते हैं। ड्रामा की स्पीड और हमारी स्पीड सेम होती है। तो हमारी ऐसी स्थिति, क्योंकि जब हम साक्षी दृष्टा बन जाएंगे, जब हमारी संकल्पों की स्पीड साक्षी दृष्टा बनने से ही कम होगी, तन में, मन में, धन में, धन भी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है और होना है, ऐसी स्थिति आनी है कि अचानक से सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, लाइट भी खत्म हो जाने वाली है। आज मोबाइल, टेलीविजन, जितने भी साधन है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, जो भी आज इंडस्ट्री चल रही है, वो सारी लाइट के ऊपर आधारित है। हमारी कारें डीजल के ऊपर थी, पेट्रोल के ऊपर थी, अभी इलेक्ट्रिक कारें भी बन रही, तो डीजल भी खत्म होने वाला है, पेट्रोल भी खत्म होने वाला है और लाइट भी खत्म होने वाली है ना। तो जिनके ऊपर हमारी जीवन चल रही है वो भी सब खत्म हो जाने वाला है। और फिर संबंध संपर्क में भी बहुत हलचल है। हर एक के परिवार में पति पत्नी का संबंध हो, माता पिता से बच्चों का संबंध हो, उसमें भी बहुत हलचल है। संबंधियों में बहुत हलचल है, संपर्क में बहुत हलचल और बढ़ने वाली है। इन सभी हलचल के बीच सब कुछ देखते हुए मैं साक्षी दृष्टा रहूं, अर्थात डिटैच ऑब्जर्वर रहूं। जैसे कोई मैच चल रहा होता है ना, कि डिटैच होकर देखते हैं, तन में बीमारी चल रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मन में कुछ हो रहा है, धन में कुछ हो रहा है, संबंध संपर्क में कुछ हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, किसका बर्थडे है आज, किसी की शादी है, किसका डाइवोर्स हो रहा है आज, किसी कोई प्रॉब्लम हो रही, कुछ भी होता रहेगा। और उसमें मैं डिटैच ऑब्जर्वर, अशरीर आत्मा बन के परमधाम घर में अशरीर बाप से कंबाइंड रहूं, या सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में समाया रहूं, ऐसी स्थिति मेरी बने। जब मेरी ऐसी स्थिति होगी, साक्षी दृष्टा की स्थिति होगी, तो ही बाबा मुझे टच कर सकेगा। जब विनाश का समय होगा, बाबा से मुझे टचिंग पावर और कैचिंग पावर चाहिएगी। उसमें मोबाइल काम नहीं करेंगे, किंतु वॉइसलेस वायरलेस काम करेगा। मेरी संपूर्ण पवित्र अवस्था ही काम करेगी कि उसमें बाबा से मुझे टचिंग होगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, वो समय, अंतिम समय तपस्या का भी होगा, साक्षात्कार का भी होगा। तो बाबा उसके उसमें मेरे द्वारा, अगर मैं साक्षी दृष्टा हूं, तो बाबा मेरे चेहरे और चलन से दिखाई देगा। अगर मैं ही, मेरा ही मन कहीं बिजी है, मेरी दिल कहीं और लगी है, बुद्धि भटक रही है, मन चंचल है, पुराने संस्कार मेरे ऊपर हावी है, तो बाबा मुझे टच नहीं कर सकता है, बाबा मेरे द्वारा कुछ साक्षात्कार नहीं करा सकता है। किंतु अगर मैं डिटैच ऑब्जर्वर बन गया या बन गई, तो बाबा मेरी डिटैच ऑब्जर्वर की स्टेज क्या है, लगभग जीरो के नजदीक की स्टेज है, या मैं यूं कहूं 0, 1, 2, 3, 4, कितने, 4 बातें, ज्ञान का सार 4 बातों में आता है, ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन अर्थात संबंध और ड्रामा। अगर डिटैच ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, अभी तक जो कुछ भी हुआ है, जो भी हो रहा है और जो भी होने वाला है, अगर मैं उसको एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना सीख जाऊं, उसका अभ्यास कर लूं, तो मेरे संकल्प कितने चलेंगे। ड्रामा को फुल स्टॉप लगाते ही जो हो गया या हो रहा है, उसको मैंने एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा दिया, तो मैं कहां पहुंच गया, सूक्ष्म वतन में पहुंच गया। क्योंकि ड्रामा इस संसार में चल रहा है, सूक्ष्म वतन में ड्रामा नहीं है, परम धाम में ड्रामा नहीं है, कर्मों का हिसाब किताब यहां है, वहां नहीं है। तो अगर मैं ड्रामा को फुल स्टॉप लगाना सीख जाए, तो मेरे अंदर 3 ही संकल्प रह गए, आत्मा, बाबा और संबंध। मैं आत्मा परमात्मा के संतान और मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ, ये तीन संबंध की स्थिति, तीन ही संकल्प रह गए ना। और सर्व संबंधों के महीन सार वाली या भिन्न भिन्न संबंधों की मैं अनुभूति कर रहा हूं उसको हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, स्वीट साइलेंस कहते हैं। और सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद जिसे हम क्या कहते हैं, लवलीन स्थिति कहते हैं, आनंद कहते हैं। तीन को हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, दो को हम आनंद कहते हैं और एक को हम अशरीर स्थिति कहते हैं। एक ही संकल्प बस बाबा रह जाए तो वो अशरीर स्थिति हो जाती है, और जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो परम धाम घर में पहुंच जाते हैं, शिव बाबा से कंबाइंड हो जाते हैं। तो अगर तीन ही संकल्प चल रहे हैं तो मैं कहां हूं, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में हूं। तीन और दो में बाबा की गोद में हूं और एक में मैं परम धाम घर में पहुंच गया हूं। तो ये मेरी स्थिति, ये कैसी स्थिति है, ये स्थिति है जिसमें मेरे चेहरे के द्वारा, चेहरा मन मन, मेरे मन के हर संकल्प भावना वृत्ति और स्मृति के द्वारा, चेहरे द्वारा मुझे, मेरे चेहरे के द्वारा बाबा नजर आएगा। और चलन के द्वारा, चलन माना कर्म, मेरा देखना, मेरा सुनना, पढ़ना, श्वास लेना, बोलना, पानी पीना या कुछ पीना, खाना खाना, हाथों से कर्म करना, चलना, अदरवाइज व्यवहार, किसी से भी व्यवहार में आना, किसी भी कोई भी कर्म करना, उसके द्वारा बाबा का साक्षात्कार होता रहेगा। अगर हम देखें साकार ब्रह्मा बाबा को देखें, ब्रह्मा बाबा के सामने जब से शिव बाबा ने उनके अंदर प्रवेश किया तब से ब्रह्मा बाबा को सबने किस रूप में देखा, कितनी भी अपहवल्स आई, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, बाहर वालों ने भी कितना कितने पेपर लिए, कितनी विकेट परिस्थितियां आई, पिकेटिंग भी हुई, आग भी लगाई गई, सब तरह के एग्जाम्स आए। और भारत में आने के बाद बैगरी पार्ट चला, और उसके आने के बाद कितने बच्चे बाबा के साथ, जो बच्चे बाबा उनसे पालना ली थी वो छोड़ के चले गए बाबा को, कितनों ने अपोजिशन की, कितने तरह के हमारे, कितने बच्चे मतलब बाबा के बीमार भी हुए यहां पर, कितनी परेशानियां आई होंगी, किंतु बाबा हमेशा साक्षी दृष्टा रहे। परफेक्ट एग्जाम्पल साकार ब्रह्मा बाबा का था, बाबा हमेशा साक्षी दृष्टा रहे। और पहले दिन से बाबा के चेहरे से और चलन से हमेशा साक्षात्कार होता रहा, फरिश्ता सो देवता का। तो हमारी स्थिति भी कैसे ऐसी बन जाए कि हम भी अगर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए हम भी ऐसे बन जाए, ऐसी हमारी स्थिति बन जाए सदा साक्षी दृष्टा की। बाबा को दादियां बताती हैं, इधर दादियों से बड़ा मेरा, जब से मैं बंधुबन आया उससे पहले से भी दादियों से बहुत ही नजदीक का संबंध रहा, दादियों की बहुत पालना मिली, डॉक्टर होने के नाते भी दादियों के पास पास जाना आना बहुत रहा। और मैं देखता था दादियां बाबा की बातें जब बताती थी, और इवन दादी जी, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी गुलजार जी जिनका कल स्मृति दिवस है, अभी दादी रत्नमोहिनी जी, दादी शांतामणि, दादी मनोहर इंद्रा और भी जो दादियां, दादी चंद्रमणि, मैं देखता था इनको सबके नजदीक बहुत निर्मल शांता दादी, इनको देखता था ये भी कैसे साक्षी दृष्टा। यज्ञ में इतनी सारी बातें होती थी, इतनी सारी घटनाएं, पिछले 30 साल में हो गए यज्ञ में रहते हुए लगभग, कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, किंतु मैंने दादियों कभी भी किसी बात पे भी उत्तेजित होते नहीं देखा। जो भी बात हो साक्षी दृष्टा होकर, डिटैच ऑब्जर्वर होके, चाहे उनके अपने तन में तकलीफ रही, प्रॉब्लम्स आई, यज्ञ में बहुत सारी समस्याएं हुई, अप एंड डाउन हुआ, सब तरह की बातें होते भी हुई साक्षी दृष्टा रही। ब्रह्मा बाबा को तो हमने नहीं देखा, उनके बारे में दादियों से सुना कि बाबा कैसे एकदम डिटैच ऑब्जर्वर रहते थे, और कैसे बाबा के से हर एक आत्मा को अपने इष्ट देव का साक्षात्कार होता था। या जो हम दादियां भी जब आई तो दादियों को, दादियों ने भी बाबा के द्वारा फरिश्ता स्थिति का या श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे हम साक्षी दृष्टा बने। जैसे बाबा कहते हैं कि हम सभी बाबा के बच्चे, अगर निश्चय बुद्धि है तो हमारी विजय है। हम निश्चय बुद्धि, किस किस में निश्चय चाहिए? सबसे पहले तो हमारा बाप में निश्चय चाहिए, फिर हमारा स्व में निश्चय चाहिए, फिर ड्रामा में निश्चय चाहिए, और चौथा हमारा परिवार में निश्चय चाहिए। और अगर हमारा चारों में निश्चय है तो निश्चय बुद्धि विजयंती है, अर्थात हमारी विजय हुई पड़ी है, अर्थात हम साक्षी दृष्टा रह सकते हैं। अब इसके डिटेल में जाने से पहले हम समझें कि हम आत्मा के पास तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, बुद्धि, मन और संस्कार। जब हम शिव बाबा जब हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें जब दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलता है, और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही शिव बाबा क्या करते हैं, हमें दो गिफ्ट हमें मिलती हैं, दो बर्थडे गिफ्ट कह सकते हैं, जन्मदिन की गिफ्ट मिलती है। अगर हम एक्यूरेटली सच्चे ब्राह्मण बन जाते हैं, ये हम दो गिफ्ट बाबा से जो मिली है इसको हम सही ढंग से समझ लेते हैं और इसको हम सही ढंग से यूज करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हम साक्षी दृष्टा स्थिति हमें ना मिले। हम चारों तरफ की हलचल के बीच में अचल रह सकते हैं, एक रस स्थिति हमारी रह सकती है, हम शक्तिशाली बन सकते हैं, तो ये हमारी स्थिति बन सकती है। तो बाबा जब दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, पहले तो हम सभी याद रखें कि हमारा ये दिव्य ब्राह्मण जन्म है, ये नया जन्म है, ये मर्जीवा जन्म है, क्योंकि सच्चे ब्राह्मण ही फरिश्ता बन सकते हैं और फरिश्ता से हम देवता बन सकते हैं। अगर हम क्षत्रिय हैं तो हम फरिश्ता नहीं बन सकते हैं, और फरिश्ता नहीं तो देवता नहीं बन सकते हैं। तो सच्चा ब्राह्मण क्या, दिव्य ब्राह्मण जन्म क्या? डिवाइन एक शब्द है, एक लौकिक शब्द है। ये हमारा लौकिक जन्म था, 83वां जन्म हमारा लौकिक जन्म था, माता पिता से गर्भ से हमने जन्म लिया, किंतु ये बाबा शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, अर्थात डिवाइन माने स्पिरिचुअल, ये हमारा स्पिरिचुअल अलौकिक जन्म है, दिव्य है, अलौकिक है, और इसमें हमें चार पांच बातों से मरना पड़ता है, देहभान, देहाभिमान, देहाभिमान के संबंध संपर्क, देहाभिमान के पदार्थ, और देहाभिमान से पैदा होने वाले पांच आसुरी स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह का, और इन पांच विकारों के वश होकर जो हम पांच विकारों के वश होकर कर्म करते हैं, उससे हमारे 10 आसुरी संस्कार हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, उससे हमारी जो सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं आत्मा की हैं, क्योंकि आत्मा के पास 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं, जिससे आत्मा इस शरीर में शरीर के 70 से 80 हजार अरब कोशिकाओं को पोषित करती है, जिससे शरीर चलता है। इसलिए जब आत्मा निकल जाती है तो सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं आत्मा से चली जाती हैं और शरीर मर जाता है, हमारे सब अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो आत्मा के पास जो एनर्जी है वो है कौन कौन सी है? पहली एनर्जी है ज्ञान अथवा सत्य की समझ, दूसरी है, और सत्य की समझ क्या है? चार बातें जो भी थोड़ी देर पहले हमने कहा, ABCD, आत्मा, बाबा, ये सत्य की समझ है कि मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, और मैं आत्मा इस 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से इस शरीर को चलाने वाली हूं। ओम शब्द के वैसे तो बहुत सारे अर्थ हैं, वो ओम शब्द का एक बहुत ही सिंपल और सरल अर्थ है, अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम। ये पहला सत्य की समझ, आत्मा को अपने अंदर इन्नेट एनर्जी है, हर आत्मा के अंदर सबसे पहले बाबा हमको यही समझ देते हैं। जब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो सबसे पहले हमको यही समझ देते हैं, ओम। इसलिए यज्ञ में पहली जो ध्वनि जो की जाती थी ओम की ध्वनि की जाती थी, ओम की धुनी लगाई जाती थी। तो ओम शब्द का अर्थ है कि मैं आत्मा, अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, कैसे, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से। तो पहला है ओम, राइट, अहम आत्मा। दूसरा है बी फॉर बाबा, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म, परम सत्य, परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा शिव बाबा से, शिव बाबा के संतान। तीसरा है कनेक्शन अर्थात संबंध, कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा इस समय मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही मुझे दो गिफ्ट मिलती हैं, मुझे बर्थडे गिफ्ट, पहली दिव्य दृष्टि और दूसरी दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। दिव्य दृष्टि अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि माना ज्ञान का, समझ का तीसरा नेत्र। कौन सा समझ का तीसरा नेत्र, कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा इसमें ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है। बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारे साथ हर समय हर स्थान पर हर कार्य में हर संबंध से तुम्हारे साथ हूं। अगर कब हूं, जब तुम अपने को आत्मा समझ के मेरे से कंबाइन होकर कार्य करो, हर समय मैं तुम्हारे साथ हूं, हर जगह तुम्हारे साथ हूं, हर कार्य में तुम्हारे साथ हूं। और चौथी बात जो बाबा हमें समझ देता है वो ड्रामा, संसार रूपी नाटक की समझ देता है। बाबा कहता है इस संसार रूपी नाटक में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसने अभी तक 100% एक्यूरेट पार्ट बजाया है और बजा रही, और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रिंसिपल एक्टर भी है, और कौन है, सुप्रीम जज भी है, सुप्रीम जस्टिस भी है अर्थात धर्मराज भी है। और उसने अभी तक हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, अभी भी दे रहा है और भविष्य में भी देता रहेगा। ये ड्रामा है, अर्थात अभी तक जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ ये किसी के साथ भी हुआ है वो परमात्मा की डायरेक्शन में हुआ है और कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हुआ है। अब कर्मों का हिसाब किताब क्या चीज है, एक होता है हिसाब और एक होता है किताब। हिसाब क्या है और किताब क्या है, जैसे हम अगर ये सोच ये देखें कि 100 साल पहले अगर हमने किसी से 10 रुपए उधार लिया, मेरा दोस्त था, फ्रेंड था, 100 साल पहले उसे 10 रुपए उधार लिया और किसी कारणवश में हम वापस नहीं कर पाए, तो 100 साल के बाद वही व्यक्ति मेरा ये दोस्त जो था इस जन्म में आके या तो मेरा बिजनेस पार्टनर बनेगा, या तो मेरे युगल बनेगा, या मेरा बेटा या बेटी बनेगा, या कोई ऐसा संबंध में आए जो मेरे बहुत नजदीक होगा और मुझे उसको 10 रुपया देना होगा वापस और साथ में ब्याज भी देना। यस, ये ब्याज हिसाब किताब है, 10 रुपया हिसाब है और जो ब्याज है वो क्या है, किताब है। अब ब्याज कितना होता है, हमने एक बार हिसाब लगाया था कि 10 रुपए का ब्याज 100 साल का कितना होता है, 4,18,35,040 रुपये। अगर 10 रुपए मैंने लिया था उसको तभी मैं वापस कर देता, आधे घंटे में वापस कर देता, तो मेरा कोई भी किताब नहीं बनती, 10 रुपए वापस कर दिया कोई पाप नहीं था। किसी व्यक्ति को मैंने कुछ गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मैंने तुरंत सॉरी कह दिया, कोई पाप नहीं बना, किंतु मैंने गलती करके और उसको मैं छिपाया और उसको उससे माफी नहीं मांगी, या मैंने कुछ ऐसा कर्म किया जो उसकी इच्छा के विरुद्ध किया, किसी विकार के वश किया, और उसको फिर मैंने उसके महसूस भी नहीं किया, और जितना देर की महसूस करने में उतना मेरा किताब बनता गया। किसी व्यक्ति को मैंने 100 साल पहले एक बार उसकी इंसल्ट की, तो 100 साल के बाद वो व्यक्ति मेरे ऐसे संबंध में आएगा कि मेरी कम से कम 1,000 बार इंसल्ट होगी, वही व्यक्ति मेरी करेगा और मुझे वहीं रहना पड़ेगा, रोज सुबह शाम इंसल्ट भी सेंड करनी होगी। किसी व्यक्ति ने मैंने किसी का अपमान किया 100 साल पहले, 2 बार किया, तो इस जन्म में व्यक्ति मेरी 10,000 बार मेरी इंसल्ट करेगा और मुझे वहीं रहना पड़ेगा और वहां मुझे सुबह शाम इंसल्ट भी सहन करनी पड़ेगी। ये कर्मों की किताब है, सुना? ये किसी के लिए माफी नहीं होता है। इसलिए कहा कर्म सत्य है, कर्म का विनाश नहीं होता है। कोई भी कर्म मैं कर दूं आज, उस कर्म का विनाश नहीं हो सकता है, किंतु जो उसका ब्याज है ना, कहते भी योग से पाप कर्म भस्म होते हैं, फिर क्या भस्म होता है? वो 10 रुपया भस्म नहीं होता है, एक या दो बार इंसल्ट की भस्म नहीं होती है। किसको मैंने धोखा दिया 100 साल पहले, 100 साल के बाद वो व्यक्ति मुझे आके 1,000 बार धोखा देगा और मुझे सहन करना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। ये बाबा ने हमको समझ दी है, इसलिए इस संगम युग पर मुझे सहन करके समाना है, क्योंकि मेरे अपने किए हुए कर्मों का हिसाब किताब है। और अगर मैं सही विधि से योग करता हूं, बाबा को याद करता हूं, श्वासों श्वास बाबा से मेरा कनेक्शन है, लगन की अग्नि लगी हुई है। लगन की अग्नि, योग अग्नि क्या है? कोई अग्नि नहीं है, लगन की अग्नि है। मेरी लगन है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है, मुझे ब्रह्मा बाबा के कुल में आना है। ब्रह्मा के अंग, ब्रह्मा बाबा जब सत्य में बनेंगे, श्री कृष्ण बनेंगे, मुझे उनके अंग संग रहना है, मुझे मम्मा के अंग संग रहना है, उसी रॉयल फैमिली में आना है, पूरे कल्प उनके साथ रहना है, तो मुझे उनके समान बनना पड़ेगा, उनको फॉलो फादर बिल्कुल उनकी फोटोकॉपी बनना पड़ेगा, हर स्टेप में फादर को फॉलो करना पड़ेगा। किंतु ब्रह्मा बाबा को फॉलो वही कर सकता है जो निराक जो अशरीरी बनके परमधाम घर में अशरीरी भाव से कंबाइंड रहे। अगर यूं कहें कि मस्तक में, बाबा ने एक मुरली में कहा था, मस्तक में शिव बाबा को समा दो और आंखों में ब्रह्मा बाबा को समा दो, अर्थात मेरे मस्तक की एक कोशिका में 100 अरब कोशिकाएं मेरे मस्तक में, ब्रेन में, सारा दिन ही चलते फिरते उठते बैठते मैं अशरीरी आत्मा परमधाम घर में अशरीरी भाव से कंबाइंड हूं, सारा दिन ये अंदर बजती रहे धुन और अंदर लगातार मेरा कनेक्शन बाबा से जुड़ा रहे, क्योंकि शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, मेरी फ्रीक्वेंसी 15, 20, 25, 30, 40 है। तो जितना मैं निराकारी बाप से निराकार बाप से कंबाइंड रहूंगा, निराकारी बनकर के चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करते करते, उसके लिए देही मानी स्थिति चाहिए। देही मानी स्थिति का अभ्यास, देही मानी स्थिति क्या? जो बाबा की मुरली है, जो बाबा के महावाक्य हैं, आज जैसे आज की मुरली है, कल संडे की मुरली हमने सुनी, कल शाम को बाबा की पधरामणि की हमने मुरली सुनी, परमात्मा के परमात्म संघ का रंग, सारा दिन उसमें डूबे रहें, श्वासोश्वास उसमें डूबे रहें, उसी में समाये रहें, तो वो सारा दिन उसका अभ्यास चलता रहे तो मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, ब्रह्मा बाबा की 1 है। और मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15, 20, 25, 30। तो निरंतर शिव बाबा, तो देही मानी स्थिति किसे कहते हैं? जो बाबा की रोज मुरली सुनते हैं, बाबा की जो श्रीमत है, उस इस देह में रहते हुए सारा दिन उसका मनन चिंतन मंथन सिमरण चलता रहे, सारा दिन मुरली के एक महावाक्यों को रिवाइज करते रहे, दिली दिल में बाबा को इसको सच्चे दिल की लगन से रिवाइज करते रहे और सच्चे दिल से उसको रियलाइज, सच्चे दिल से महसूस करते रहे कि आज बाबा की श्रीमत मेरे लिए है, आज बाबा की शिक्षा मेरे लिए ये है, आज बाबा ने मुझे ये सावधानी दी है। मुरली में क्या क्या होता है? क्या होता है? आज्ञा होती है, शिक्षा होती है, सावधानी होती है और फरमान होते हैं। 4 बातें होती हैं। क्या क्या होता है? पहली आज्ञा, दूसरा शिक्षाएं, तीसरा सावधानी और चौथा फरमान। 4 बातें अगर मेरे अंदर वो मैं अटेंशन से उसको रिवाइज करता हूं और रियलाइज सच्चे से महसूस करता हूं कि जो आज बाबा ने मेरे लिए आज्ञा दी उसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ले आऊं, जो आज बाबा ने मुझे शिक्षा दी बच्चे ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, सावधानी दी बच्चे ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और जो मेरे फरमान जो ऑर्डर दिया आज का कि बच्चे तुम्हें आज ऐसा बनना है ऐसा करना है, जैसे वरदान है, स्लोगन है, धारणा के लिए मुख्य सार है, तो बाबा ने जो मुझे आज ऑर्डर दिया फरमान दिया मुझे उस पर उसको प्रैक्टिकल चलना है। तो इसको सच्चे दिल से महसूस किया, इसी को हम चिंतन कहते हैं, हिंदी में चिंतन कहते हैं, मनन को हम कहते हैं हमने इसको रिवाइज किया, और तब हमारा मंथन चलता है, मंथन अर्थात तब मक्खन निकलता है, उसी में हम समाये रहते हैं, दिल में ये चलता है चिंतन, हम रिवाइज और रियलाइज करते हैं तो हमारा क्या चलता है, बुद्धि में मंथन चलता है, मंथन चलता है, मंथन जब चलता है उसमें दिल में सिर्फ ये रिवाइज और रियलाइजेशन चलता है जो बाबा की मुरली का, उसमें हम दिल लगन में मगन हो जाते हैं, तो दिल में जो बाबा कहते हैं जब दिव्य ब्राह्मण जन्म हमको मिलता है तो मेरे दिल में देखो जितने मनुष्य हैं, मनुष्य के दिल बुद्धि मन और तन में क्या समाया हुआ, देहभान देहाभिमान, देहाभिमान के संबंध संपर्क, देहाभिमान के पदार्थ, और देहाभिमान से पैदा होने वाले आसुरी स्वभाव, पांच विकार काम क्रोध लोभ अहंकार, और उनसे उनके वश होकर कर्म करने से हमारे अंदर जो संस्कार बनते हैं आसुरी संस्कार, आलस्य अलबेलापन दोष दर्शन बदला लेने की भावना संशय बुद्धि अनुमान लगाना चिंता भय जल्दबाजी, हर बात में जल्दबाजी, प्रेशर टाइम का प्रेशर काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए जैसे मैं कहूं ऐसे ही होना चाहिए, कंपटीशन कंपैरिजन करना ईर्ष्या द्वेष करना, ये हमारी आदत बन गई है, संस्कार बन गए, मनुष्य के दिल बुद्धि मन तन में समाया हुआ है। और जब दिव्य ब्राह्मण जन्म में मिलता है तो शिव बाबा क्या करता है, बुद्धि मन संस्कार को परिवर्तन नहीं करता है, शिव बाबा दिलाराम आके दिल में आके बैठ जाता है, दिल में दिल से अगर हम उसको खत्म कर दें इन पांच बातों को, देवान देवीमान देवीमान के संबंध संपर्क पदार्थ और आसुरी स्वभाव संस्कार को खत्म कर देते हैं तो दिल में बाबा आके बैठ जाता है, दिलाराम। बाबा ने एक मूल्य में कहा ना, हर एक सच्चे ब्राह्मण के दिल में दिलाराम दिल की दुलार दे रहे हैं, दिल का प्यार दे रहे हैं। दिलाराम कौन है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सच्चे रूहानी स्नेह का सागर, उसे अपने दिल में महसूस करो, दिल ये वाला दिल नहीं, ये तो बॉडी का दिल है, आत्मा का दिल, चेतना कॉन्शियसनेस कॉन्शियस अंतरात्मा जिसे कहते हैं, तो बाबा इस दिल में आ जाता है, उसको दिल ही दिल में महसूस करें, रिवाइज करें, रियलाइज करें बाबा कौन है, एबीसीडी का सागर, उस सदा ही सोल कॉन्शियस है, सदा ही अपनी स्थिति में है, और सदा ही ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है उससे साक्षी दृष्टा है, दुनिया में कितने भी बच्चे हैं कैसे भी हैं, कोई मर रहे हैं, कोई शरीर छोड़ रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, आतंकवाद चल रहा है, वो साक्षी दृष्टा, परम साक्षी दृष्टा है शिव बाबा। और ब्रह्मा बाबा भी एकदम साक्षी दृष्टा है, अव्यक्त ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में बैठा है, एकदम साक्षी दृष्टा है, देख रहा है, जानता है सब कुछ जो हो रहा है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। तो मैं भी जब बाबा का बच्चा हूं तो मुझे भी जब मैं उससे कंबाइंड रहूं निरंतर, तो मैं भी वैसा ही साक्षी दृष्टा बन सकता हूं। अगर मुझे साक्षी दृष्टा बनना है तो मुझे ऐसे बाबा के साथ निरंतर कंबाइंड रहना पड़ेगा। तो बाबा से कंबाइन, तो एबीसीडी जो बाबा ने सत्य की समझ दी हमें, तो जितना ये जब शिव बाबा को दिल में बिठाते हैं और हर समय बाबा को सच्चे दिल से महसूस करते रहते हैं, बाबा कैसा है, ज्ञान का सागर कैसे है, नॉलेजफुल है ना, कैसा त्रिकालदर्शी है ना बाबा, त्रिकाल तीनों लोक कालों को जानता है इसलिए वो साक्षी दृष्टा है, त्रिनेत्री है इसलिए साक्षी दृष्टा है, और त्रिलोकी नाथ है इसलिए साक्षी दृष्टा है। तो मुझे भी बाप समान त्रिनेत्री जो बाबा ने दिव्य दृष्टि की गिफ्ट दी है, मुझे इन आंखों से नहीं देखना है, मुझे ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखना है कि मैं आत्मा हूं, हम एक मैं एक बाबा के संतान हूँ, ये जो सामने भाई बहन है, मेरी पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई दोस्त हैं, ऑफिस में काम करने वाले हैं, मेरे सेंटर पे साथी बहने हैं, या जो भी हैं जिज्ञासु हैं सेंटर पे आने वाले, जो भी कहीं पर भी हैं, सारे विश्व में जो भी हैं, वो भी उस बाप के बच्चे हैं, भले बीके हैं भले नॉन बीके हैं, और वो भी एक्टर है, मैं भी एक्टर हूं, और हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, हर एक आत्मा का संस्कार अलग अलग है। वो जब हम इस दृष्टि से हम एक दूसरे को देखते हैं और फिर हम ड्रामा को, जब ड्रामा, तो बाबा कहते हैं ना कि ड्रामा संसार रूपी नाटक में हर आत्मा ने एक्यूरेट पार्ट प्ले किया है। कोई व्यक्ति में मेरी इंसल्ट कर, इंसल्ट की तो किसके किसकी डायरेक्शन में की? परमात्मा की डायरेक्शन में की। धोखा दिया किसकी किसकी डायरेक्शन में? परमात्मा की। क्यों क्यों परमात्मा की डायरेक्शन में कर रहा है? क्योंकि बाबा चाहता है मेरा ये बच्चा, इसके ऊपर जो हिसाब किताब चुकतू हो जाए, इसने कुछ गलत किया था तो इसको वापस मिल जाए और इसका हिसाब किताब चुकतू हो जाए। और क्योंकि बाबा से मैं कंबाइन हूं, तो बाबा कौन है? सहन करने की शक्ति का सागर है बाबा, समाने की शक्ति का सागर है बाबा, सामना करने की शक्ति का सागर है बाबा, फिर भी सहयोग करने की शक्ति का सागर है। तो उस सागर से मैं कंबाइंड है कि सहन करके समा सकता हूं। और अगर मैं एक्यूरेट विधि से कार्य करता हूं, एक्यूरेट विधि से बाबा को याद करता हूं, रिवाइज और रियलाइज करता हूं बाबा के मूल्य के बाबा के को, तो क्या होता है? 100% एक्यूरेट करता हूं तो मेरा ये ब्याज माफ हो जाता है। सुना कितना माफ हो जाता है? 10 रुपया तो देना ही पड़ता है, फिर तो 4,18,35,040 रुपये माफ हो जाता है। एक गाली तो खानी पड़ती है, किंतु 10,000 जो गाली खानी थी वो माफ हो जाती है। अभी तक जितनी खाई, कि तो अभी से मैं बाबा की याद में रहना शुरू कर दूं, एक्यूरेट विधि से बाबा के मूल्य के महावाक्यों को सही ढंग से रिवाइज और रियलाइज करना शुरू कर दूं, हर समय बाबा से, जैसा समय जैसा स्थान वैसा जैसा जैसा कार्य, उस विधि से मैं बाबा को यूज करता रहूं, तो कहते ना अगर बाबा साथी है ना, अगर बाबा साथी है तभी हम साक्षी दृष्टा बन सकते हैं। अगर बाबा मेरा साथी है हर स्थान हर समय हर स्थान पर, इवन सोते बाबा का, सोना भी अकेले नहीं है, बाबा से कंबाइंड होकर सोना है, खाना भी अकेले नहीं खाना है, बाबा से कंबाइंड होकर खाना है, पानी पीना है बाबा से कंबाइंड होकर पीना है, कुछ भी करना है, हम पेशेंट देखते हैं हॉस्पिटल में, बाबा से कंबाइंड होकर पेशेंट देखें, किसी से भी मिले बाबा से कंबाइंड होकर मिले। जैसे अंतर्मुखता का मतलब भी क्या है? मुझे दादी का एक महावाक्य, दादी बड़ी दादी जी थे ना, तो दादी से रोज मिलना होता, दादी ने कहा हुआ था कि मुरली के बाद मुझे कम से कम 5 मिनट तो मेरे पास बैठ के ही जाना है। तो दादी जी जब एक दिन दादी ने मुझे कहा, दादी जब अकेली होती थी मुझे कुछ ना कुछ सिखाती थी, कोई ना कोई बात, तो कोई ना कोई बात पूछेंगी या तो कुछ सिखाएंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे। दादी ने कहा कि आप गुप्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं? मैं दादी इंचार्ज माना जो इंचार्ज होता है अपने डिपार्टमेंट का, उस समय माउंट आबू में 40 डिपार्टमेंट थे पांडव भवन में, दादी हर डिपार्टमेंट का अपना अपना इंचार्ज है, हेड द डिपार्टमेंट है। तो दादी ने कहा फिर भी इंचार्ज का इंचार्ज वर्ड कहां से है? मैंने कहा दादी आप बताओ। तो दादी ने कहा जो इन रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, अंदर रह के इन रह के अपने आप को बाबा से चार्ज कर, अपने को अंदर में जो मैं आत्मा हूं और परमात्मा पिता से सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइंड रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, और उन चार्ज करके आत्मा से बुद्धि को, मन को, अपने संस्कारों को, आंख को, नाक को, कान को, मुख को और शरीर के एक अंग को, उन सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर करता रहे। और जो भी व्यक्ति उसके डिपार्टमेंट के व्यक्ति उसके संबंध संपर्क में आए, उनको भी पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से भरपूर करता रहे, वो है इंचार्ज। इसलिए सचमुच मुझे साक्षी दृष्टा बनना है तो मुझे अंतर्मुखी रहना पड़ेगा। अंतर्मुखी का मतलब क्या है? अंदर में जो मैं आत्मा हूं, वो अंदर मैं जो आत्मा हूं परम धाम में परमात्मा पिता से कंबाइंड रह के, सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइंड रह करके सोचूं। जब भी कुछ सोचना है तो बाबा से कंबाइंड होकर सोचना है, जब भी कुछ निर्णय करना है तो बाबा से कंबाइंड होकर निर्णय करना है, जब भी कुछ देखना है तो बाबा से कंबाइंड होकर देखना है, जब भी किसी की कोई बात सुननी है तो बाबा से कंबाइंड होकर सुननी है, श्वास भी बाबा से कंबाइंड होकर लो, कुछ भी बोलना है तो बाबा से कंबाइंड होकर बोलो, कुछ भी खाना है तो बाबा से कंबाइंड होकर खाओ, पानी भी पीना है तो बाबा से कंबाइंड होकर पियो, हाथों से कुछ कर्म करना बाबा से कंबाइंड होकर कर्म करो, चलना है तो बाबा से कंबाइंड होकर चलो, किसी से व्यवहार में आओ तो बाबा से कंबाइंड होकर करो। तो ऐसी अगर मैं अंतर्मुखी बन जाऊं, मैं आत्मा हर समय मेरी स्थिति रहे, तो बाबा मेरे साथ हर समय कंबाइंड है, यही अभ्यास मेरा दिन रात का होना चाहिए। अगर मेरी ऐसी स्थिति बन जाती है तो मैं साक्षी दृष्टा हूं, बाबा सदा मेरे साथ है। तो हम यहां से इसको समझ लें कि दिल में अगर मेरे बाबा है, इसको कहते सच्ची दिल, और साफ दिल माना जिस दिल में जिसमें बाबा है ना, उसको बाबा की बातें याद आएंगी, बाबा की मुरली उसके अंदर आएगी अपने आप, जो दिल में होता है उसकी याद अपने आप आती है। दिल में अगर आपका बच्चा आपके अंदर बैठा दिल में ना, तो बच्चे की याद आएगी, ग्रैंडसन बैठा ग्रैंडसन की याद बात याद है, किसी के अंदर बैंक बैलेंस बैठा तो बैंक बैलेंस ही याद आता रहेगा, भले यहां बैठ के योग करता रहे। तो दिल में जो होता उसकी याद आती है ना, तो दिल में अगर बाबा है तो मेरे अंदर क्या होगा, मेरे अंदर जैसे एक बच्चा जब मां के पास जाता है, अपना बच्चा चाहे कलेक्टर बन गया हो तो उसको अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं, तो जैसे बाबा वो अपने मां के पास जाकर बचपन के दिन याद आते हैं तो उसको अपना बचपन याद आता है। ऐसे ही जब हम बाबा के साथ रहने लगते हैं, दिल में बाबा आ जाता है तो हमें अपना परमधाम वाला स्वरूप याद आने लगता है, हमारी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की फाइलें खुल जाती हैं कि कैसे बाबा के पास में परमधाम में कैसे चमकता हुआ सितारा, बाबा परम सत्य है तो मैं मास्टर परम सत्य हूं, बाबा परम पावन है तो मास्टर परम पावन, बाबा परम शांत है तो मैं मास्टर परम शांत स्वरूप स्थिति में हूं, मैं मास्टर परम स्नेह स्वरूप स्थिति में हूं, मैं मास्टर परम अतीन्द्रिय सुख स्वरूप स्थिति है, मास्टर परम आनंद स्वरूप स्थिति है, मास्टर परम सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्थिति है। तो ये मेरा अनादि ज्योति बिंदु और आदि देवी देवता स्वरूप, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म स्वरूप याद आने लगता है। तो मेरी फाइलें खुल जाती है अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप की, और मैं स्थिति में स्थित होकर कर्म करूं, यही पवित्रता की स्थिति है। ये पवित्रता की पहली पहली स्टेज है कि स्थिति में स्थित होकर मैं सोचूं, निर्णय करूं, देखूं, पढ़ूं, सुनूं, खाऊं, पीऊं, हर चीज कर्म करूं, इस स्थिति में स्थित होकर अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देव देवता स्वरूप, और जब किसी से व्यवहार में आऊं तो उसका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि पावन सत्वना स्वरूप देखकर इमर्ज करके व्यवहार करूं, और इस स्वरूप में आप ऑटोमेटिक लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाएगा। क्या क्यों कैसे खत्म हो जाएगा, क्रोध लोभ मोह अहंकार का भी अंश भी खत्म हो जाएगा, और मैं ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी भी बन जाऊंगा। और जब ऐसी पवित्रता आ जाती है जीवन में तो अपने आप ही पास्ट की बातों को फुल स्टॉप लग जाता है, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि जो भी कुछ हुआ है वो मेरे अपने कर्मों का फल है, जो बोया था वही मुझे काटना पड़ता है। तो हम पास्ट को फुल स्टॉप लगा देते हैं, और पास्ट को फुल स्टॉप लगा करके अपने सत्य स्वरूप में टिक के अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप स्थिति में स्थित होकर परम सत्य भाव से कंबाइंड होकर हर कर्म करने लगते हैं, इसी को कर्मयोगी स्थिति कहते हैं, इसी को स्थित प्रज्ञा स्थिति कहते हैं, इसी को साक्षी दृष्टा स्थिति कहते हैं, और इसी को शांति भी कहते हैं। तो ये शांति की स्थिति आ जाती है, और जब शांति की स्थिति आती है तो हम अपने आसपास अपने घर में अपने कार्यस्थान पर जो कहता है बाबा कहता है ड्रामा पे ये हो गया ना, बाप पे निश्चय हो गया, स्वयं पे निश्चय हो गया कि बाबा ने मुझे ऐसा बनाया है, और फिर ड्रामा पे निश्चय हो गया, ड्रामा पे निश्चय हो गया तो फुल स्टॉप लग गया। और जब ड्रामा पे निश्चय हो जाता है तो हम अपने परिवार में, लौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में, या कार्यस्थान पर जो भी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि परिवार में स्वभाव संस्कार निकलते हैं। एक बात बहुत सीक्रेट है कि जो भी इस समय हमें परिवार लौकिक परिवार में मिला ना, या अलौकिक परिवार मिला है, जैसे हम दिल्ली से अब आप पांडवन में आके रहने हॉस्पिटल में आए, फिर पांडवन में संबंध संपर्क में आए, फिर हमें शांतिवन में रहने लगे, तो पूरा हमारा जो परिवार है अलौकिक परिवार है, जितने भी बाबा के बच्चे हैं सारे विश्व में, भारत में, वो सब यहां आते हैं, उनसे मिलना जुलना होता है। तो ये हमारा अलौकिक परिवार है। तो इसमें हमारे हिसाब किताब भी है, 63 जन्मों में, 84 जन्मों में, सत्युग से लेके हमारे हिसाब किताब है। सत्युग त्रेता में हमारे सत्तो प्रधान सत्तो वाला था, उसमें कोई अकर्म थे कि, तो द्वापर से विकर्म शुरू हो गए। तो वो हिसाब किताब भी है, वो आत्माएं हमारे सामने आती हैं और फाइलें खुलती हैं, वही फाइलें खुलती हैं अंदर से, आत्मा के अंदर से। तो फाइलें खुलती तो वो चीजें सामने दिखाई देती हैं, किंतु अगर मैं बाबा से कंबाइंड हूं तो उन फाइलों का मेरे पर कोई असर नहीं होता। मैं बाबा की याद में रह करके, साक्षी दृष्टा स्थिति में रह करके, वो फाइलें जैसे वो सामने वाले व्यक्ति को, मेरे से कैसी फीलिंग आएगी, फरिश्ता की फीलिंग आती है। तो उसको मैं न्यारा प्यार रहता हूं, जैसे आग होती ना, आग में से जाओ, फायर प्रूफ ड्रेस पहनी हुई है। तो फाइलें, क्योंकि रिटर्न जर्नी पर है, वो सब आत्मा हिसाब किताब लेने आती हैं कि, तो अगर मैं बाबा से कंबाइन हूं तो मेरा कोई भी हिसाब किताब नया बनता नहीं। वो कुछ भी मेरे साथ कोई गलत भी करता है तो वो सहन करके समा लेता हूं, क्योंकि मैं बाबा से कंबाइन हूं। बाबा से कंबाइन तो मेरे को ऊपर मेरे अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आती है। एक के बाद एक नए नए पेपर आते हैं, तन के भी आते हैं, मन के भी आते हैं, धन के भी आते हैं, संबंध संपर्क के भी आते हैं, वो भी सामना कर पाता। और जो तंग करते हैं, जिनसे हिसाब किताब है, उनको मैं सहयोग भी कर सकता हूं। तो आठों शक्तियां मेरे साथ हर समय रहती हैं। बाबा साथ है दिल में, बुद्धि में बाबा साथ है, दिल में बाबा साथ है, तो तेजी आंख खुली रहती है, निर्णय शक्ति दिव्य हो जाती है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है। एक सेकंड में मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाता हूं। बाबा की गोद में, बाबा की गोद में भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति में खोए रहते हैं हम, कभी ज्ञान सागर में, कभी पवित्रता के सागर में, शांति के सागर में, प्रेम के सागर, सुख के सागर में समाये रहते हैं। कभी बाप के संबंध, कभी टीचर का संबंध, कभी सदगुरु का संबंध, कभी बंधु का, सखा का, साजन का, सर्जन का, बच्चे का, जैसा समय जैसा स्थान वैसे उसको यूज करते हैं। तो बाबा से हमें हमेशा ऐसा लगता है बाबा हमारे साथ है। तो जैसे मैं लगातार ये स्थिति रहने लगती है तो मेरा चित्त शांत हो जाता है। चित्त माना मेरा सबकॉन्शियस माइंड, अभी पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड एकदम शांत हो जाता है, सिर्फ कॉन्शियस माइंड काम करने लगता है, मेरा कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाती है। अब बाबा की मुरली मेरे शांत होने से बाबा की मुरली मेरे अंदर बजने लगती है, बाबा की मुरली का ही चिंतन चलने लगता है सारा दिन। उसी को उसी संबंध संपर्क से मैं बाबा से, उसी संबंध से बाबा को बार बार मैं रिवाइज करता हूं बातों को, उसी को मैं महसूस करता रहता हूं। तो मेरी भावना, संकल्प भावना में परिवर्तन, शुभ भावना, शुभ कामना पैदा होती है और भावना से वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन मेरे बाबा तक पहुंचते हैं और बाबा से वाइब्रेशन हजार गुना होकर मेरे पास वापस आते हैं। तो इसको बोलते हैं, ये है सच्ची सच्ची याद, बाबा की एक एक बात को अंदर रिवाइज करना, रियलाइज करना। तो बाबा की बातें बार बार बुद्धि में आती हैं, बाबा मुझे ऐसा बनना है, बाबा मुझे ऐसा बाबा ने कहा संकल्प तो कर, दृढ़ता नहीं होती है। तो दृढ़ता से मैं जब करता हूं तो बाबा की बातें, मेरे बाबा छत्र छाया बन जाता है मेरे ऊपर और बाबा से टचिंग पावर, कैचिंग पावर आने लगती है, बाबा से टचिंग आने लगती है, हर बात के लिए टचिंग आने लगती है, हम कैच कर सकते हैं। और फिर क्या होता है, फिर हम उसी भावना में रहते हैं, उसी भावनाओं में खोए रहते हैं सारा दिन, तो एक वृत्त बन जाता है। जैसे पंखा चल रहा है ना, जब पंखा चल रहा है तो उसकी पंखड़ियां नजर नहीं आती हैं, तो मेरी स्थिति एकदम जैसे फरिश्ता स्थिति जैसी बन जाती है। और उस पंखे जैसे पंखा चलने से हवा आती है, ऐसे अंदर पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और शक्तियों के क्या होते हैं, वो एनर्जी पैदा होती है। और जब उसी स्थिति के अनुभव में हम कर्म करते हैं तो रिकॉर्ड होते जाते हैं, तो हम स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं, पवित्रता के स्मृति स्वरूप, शांति के स्मृति स्वरूप, रूहानी प्रेम के स्मृति स्वरूप, अतीन्द्रिय सुख आनंद के स्मृति स्वरूप, शक्तियों के एक एक शक्ति को यूज करके प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो जब ऐसी रिकॉर्डिंग होती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, मेरा व्यवहार बदलता जाता है। मेरे चेहरे से कौन नजर आता है, क्योंकि बाबा की याद में रहकर कर्म कर रहा हूं तो बाबा नजर आने लगता है। मेरे मस्तक में हमेशा बाबा किसी ना किसी रूप में साथ रहता है, तो बाबा मेरे मस्तक से दूसरों को महसूस होगा। मेरे चलन से, मेरे देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना से, थे ना विश्वरतन दादा, तो विश्वरतन दादा देखने सुनने चलने से क्या महसूस होता है, जैसे ब्रह्मा बाबा ऐसे ब्रह्मा बाबा भी ऐसे थे, ब्रह्मा बाबा भी ऐसे थे, तो ऑटोमेटिक हर कर्म से बाबा प्रत्यक्ष होता है। तो धीरे धीरे हम क्या बनते जाते हैं, हर आत्मा को ये फील होता है कि ये इनको जो भी उनकी इच्छा होती है साक्षात्कार होने लगते हैं, और हमारे मन की स्पीड इतनी स्लो हो जाती है विचारों की कि वो हम दर्पण बन जाते हैं, हर एक आदमी अपने आप को मुझ में देख सकता है, हर एक आदमी के मन के संकल्प स्लो हो जाते हैं, तो उनको अपने इष्ट के दर्शन हो जाते हैं, या यूं कहें उनकी हर इच्छा अपने आप पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह अगर हम बाबा के साथ साक्षी दृष्टा बन के रहें, बाप में निश्चय पक्का करें, तो बाप से निश्चय में जब होगा स्व में निश्चय आ जाएगा, ड्रामा में फुल स्टॉप लगाना आ जाएगा, तो परिवार लौकिक अलौकिक परिवार इसके द्वारा ही मुझे सर्टिफिकेट मिलना है, तो इस पे निश्चय हो जाएगा, क्योंकि अगर बाबा साथ है तो मैं साक्षी दृष्टा सहज रह पाऊंगा, बाबा तब साक्षी दृष्टा बनने के बाद बाबा मुझे टच कर पाएगा और बाबा मेरे द्वारा अपना कार्य करा पाएगा। इसी को कहते हैं साक्षात्कार मूलक स्थिति। ओम शांति।
में भरती